फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो एकता के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत, नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य फरिश्ता, इस विषय पर आज हमारे बीच हैं आदरणीय उषाबेन जी। उषाबेन को तो सब जानते होंगे ना, जानते हैं? आप हमारी अति स्नेही बाबा की अलौकिक, बहुत सी सेवाएं करने वाले, चारों तरफ देश विदेश में ज्ञान योग के रतन सबको देने वाले, अनुभवों से अपना जीवन स्वयं भी सजाया है और औरों का भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो ऐसे हमारे उषाबेन जी, मैं समझती हूँ लगभग 35-40 वर्षों से यज्ञ में ही अपनी सेवाएं कर रहे हैं और पॉलिटिकल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तो आज हमारे साथ हैं। हमें आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन।
ओम शांति। मधुबन बाबा का बेहद का ये सुंदर अलौकिक घर कहो, धाम कहो, बाबा की कर्म भूमि पर ये बट्टी करने का चांस मिलना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। यहां से ही यज्ञवत्सों में कई महारथी बाबा मम्मा सहित अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, या यूं कहे कि जो ब्राह्मण जीवन की फाइनल डिग्री है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, उसको प्राप्त किया है। हम सभी का भी लक्ष्य यही है कि हमें भी अपने इस पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते हुए उस अव्यक्त फरिश्तापन के स्वरूप को धारण करना है। लेकिन ये स्वरूप खाली योग के समय हम बैठ करके सोचे कि भाई मैं एकदम हल्का हूं, फरिश्ता हूं, ऐसे तो फरिश्ते नहीं बन जाएंगे। फरिश्तापन का आधार तीन बातें बाबा हमेशा बताते हैं, अंतर्मुखता, अव्यक्त और अलौकिकपना। अंतर्मुखी जितने हम रहते हैं तो ये जैसे आधार बनता जाता, अव्यक्त यानी व्यक्त भाव से, व्यक्त बातों से, व्यक्त भान से भी ऊपर, जितना अधिक समय उस स्वरूप में हम रहते हैं। और तीसरा जैसे कहा अलौकिक, लौकिक पना न हो, बोल चाल व्यवहार में जो लौकिक भान में आ जाते हैं या मेरा तेरे के भाव में आ जाते हैं, उस लेन देन में आ जाते हैं, तो उससे उपरा, तो जिसके अधिकतर समय इस धारणा में है वही योग में जब बैठते हैं उस समय वो हल्केपन का अनुभव कर पाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की जो डेफिनेशन दी है कि सबसे पहली डेफिनेशन बाबा हमेशा कहते हैं हल्का, हल्कापन। तो मैं सोच रही थी कि किस में हल्कापन, किस में हल्कापन चाहिए, तो सारे दिन की दिनचर्या के अंदर, क्योंकि जब हमारा बाबा का ये कार्य जो है उसमें प्रैक्टिकल बातों को ज्यादा महत्व दिया गया है, प्रैक्टिकल धारणा को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो जब हल्का कहते हैं तो किस में हल्कापन, तो सबसे पहला हल्कापन चाहिए संकल्पों में। बाबा बार बार हम बच्चों को इशारा देते हैं हर सीजन में, कितनी बार बाबा कहते हैं व्यर्थ और नेगेटिव के बोझ से अपने आप को हल्का करो। तो संकल्पों में हल्कापन तभी आएगा कि जितना हमारे संकल्पों में व्यर्थ नहीं चलेगा, इम्प्योरिटी तो हो ही नहीं, नेगेटिव तो इम्प्योरिटी में ही गिनी जाती है, लेकिन व्यर्थ ये भी एक बोझ है, तो ये बोझ भी हमारे मन के ऊपर न हो। तो संकल्पों से हल्कापन, अगर अंदर में व्यर्थ चलता हो सारे दिन, नेगेटिव चलता हो, और फिर हम योग में बैठ करके सोचे मैं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूं, उससे फरिश्तापन का अनुभव नहीं होता है। दूसरा हल्कापन चाहिए वाणी में, संकल्प का कनेक्शन वाणी से, तो हमारे मुख से जो भी बोल निकले हल्के यानी दूसरों में उमंग उत्साह भरने वाले, जो सहज ही स्वयं को भी उड़ाने वाला हो और दूसरों को भी मोटिवेट करके उड़ाने वाला हो, तो वाणी ऐसी हो कि जो मोटिवेट करने वाली वाणी हो, दूसरों को सहज ही उड़ा दे। इतने सुंदर समर्थ बोल हमारे निकले, हमारे शब्दों में वाणी में कोई ऐसा तीर न लगे किसी को जो उसके दिल में ऐसा घाव कर जाए, जो अंदर से टूट जाए। ऐसी कोई भी वाणी न हो ब्राह्मणों की, ऐसा कोई शब्द ब्राह्मणों का नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना जैसे बाबा हर एक आत्मा के प्रति कितने ऊंचे वरदानी बोल बोलते हैं, तो हमारे बोल में भी अब वरदानी बोल या जो हमारे मुख से शब्द निकले वो जैसे दूसरों के लिए वरदान बन जाए। क्योंकि आखिर भी बाबा के बच्चे पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं, पवित्रता की शक्ति जब वाणी में भी आती है तो वही श्राप भी बन जाता है तो आशीर्वाद भी बन जाता है। तो जितने श्रेष्ठ बोल होते हैं वो आशीर्वाद या वरदान बन जाता है। तो श्राप देने वाले बाबा, कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि किसी आत्मा के लिए ये कह देना ये तो है ही ऐसा, है ना, ये कहना ये भी जैसे श्राप देने वाली बात है। तो हमारे मुख से ऐसा कोई बोल ना निकले, उमंग उत्साह भरने वाले बोल, मोटिवेट करने वाले बोल या ऊंचा उठाने वाले बोल, किसी को उठाने वाले बोल, ऐसे वरदानी बोल निकलते हैं जिसके लिए गीता में कहा मधुरम प्रियम और क्या कहते हैं उसको, हित हित करने वाले, दूसरों का हित करने वाला बोल। तो शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बोल। तो संकल्प में हल्कापन, वाणी में हल्कापन, फिर तीसरा है कर्म में हल्कापन। अब कर्म में हल्कापन कैसे आएगा, तो जो कर्म हम करें दिन भर में, हर कर्म हमारा ज्ञान युक्त कर्म हो। ज्ञान युक्त कर्म जितने हमारे होंगे या जिस कर्म में मैंपन का भाव न हो, करण करावन हार बाबा करा रहा है। जब मैं कर रही हूं ये भाव आ जाता तो उसमें गलतियां अनेक होगी। ये भाव आने से ही नीचे आ जाते हैं। लेकिन जैसे मम्मा की जीवन कहानी में हम सभी जानते हैं कि मम्मा हमेशा यही धारणा में रही कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, यानी करण करावनहार बाबा करा रहा है। निमित्त भाव जितना आ जाता है बड़ी दादी जी के अंदर भी हमेशा यही निमित्त भाव देखने को मिला, तभी संपूर्ण फरिश्ता बन गए यहां पर ही। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन के हर कर्म के अंदर जब निमित्त भाव आ जाता है, कराने वाला बाबा, बाबा के हुक्म के आधार पर, श्रीमत के आधार पर मैं कर्म कर रही हूं, तो वो कर्म कभी हमें बोझ महसूस नहीं कराएगा, हिसाब किताब को बांधेगा नहीं, लेकिन और ही हमें हिसाब किताब से फ्री करने वाला और इस तरह से कर्म में हल्कापन आ जाएगा। फिर और कहां हल्कापन चाहिए, स्वभाव में, नेचर में। तो नेचर में कौन सी बात हो, स्वभाव में ऐसी कौन सी बात हो जो हल्कापन प्रैक्टिकली ले आए। तो जितना स्वभाव में सरलता है, सहजता है, इजीनेस है और सरल है। दादी गुलजार को हमेशा देखते हैं कितने सरल स्वभाव के, कोई कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं, कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं, सहजता स्वभाव के अंदर। और इसीलिए हरेक के दिल को जीते हुए है। तो इस तरह से जिसके नेचर के अंदर, स्वभाव में सहजता और सरलता, वही हल्का करने वाला है। फिर संबंधों में हल्कापन। तो संबंधों में हल्कापन कैसे होगा, तो संबंध में जब आते हैं तो उस वक्त आत्मभाव से संबंध में आए। ये भी आत्मा बाबा की संतान है, मैं भी आत्मा बाबा की संतान। तो जितना संबंधों में आत्म अभिमानी स्थिति हमारी होगी, उस स्वरूप से हम एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं आत्मभाव के नाते से, तो संबंध में हल्कापन। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मणि को देखो, सर्प को न देखो। संबंध में आते वक्त जब मणि को देखेंगे, यानी आत्मा को देखते हैं कि ये आत्मा भी कितनी ऊंची है, ये आत्मा भी बाप की चुनी हुई है, तो ये भाव जब उसके प्रति जागृत रहेगा तो कभी भी हमारे संबंधों में हम ऐसा वैसा कोई शब्द नहीं कहेंगे जिससे उसको फील हो जाए या फीलिंग का फ्लू चढ़ जाए, बुखार चढ़ जाए उसको हमारे संबंध में आने से ही, या कोई व्यक्ति कतराता रहे हमसे संबंध में आने के लिए, तो ऐसा हमारा संबंध न हो, तब कहेंगे हाँ संबंधों में हल्कापन। तो संबंधों में हल्केपन के लिए भी स्वभाव में सहजता सरलता ये संबंध को भी और हल्का कर देती है। जब इस तरह से हल्कापन आ जाए तो कहेंगे प्रैक्टिकल में, माना प्रैक्टिकल ये जीवन की धारणा हो, तो योग में बैठते ही सहज हल्के होकर के उड़ने का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए उन फरिश्तों का जो स्वरूप है, लाइट और माइट का स्वरूप, बाबा ने दूसरा डेफिनेशन जो दिया लाइट माइट स्वरूप, तो लाइट है ज्ञान की लाइट, है ना, ज्ञान का प्रकाश जीवन में हो, हर स्तर पर वो ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, और योग की लाइट माइट हो, योग से शक्ति प्राप्त होती है। तो शक्ति स्वरूप हो योग का और ज्ञान की लाइट हो, तो ये हमारे टोटल स्वरूप में आ जाए, ज्ञान और योग की लाइट और माइट। तीसरी डेफिनेशन जो बाबा हमेशा फरिश्तों के लिए देते हैं वह है कि उसके बुद्धि रूपी पांव कहाँ होते हैं? उसके पांव धरती पर नहीं होते हैं, फरिश्तों के पैर धरती पर, वो चलते नहीं है, उड़ते हैं। तो उड़ेंगे कैसे? फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं। हल्कापन किस बात में चाहिए वो देख लिया, लेकिन अब उड़ने के लिए ना, कैसे उड़ना होता है? तो जो बाबा हमेशा कहते हैं कि पांव है ये बुद्धि, बुद्धि रूपी पैर, और धरनी है ये प्रकृति। तो प्रकृति के बंधन में आकर के, उसके लगाव में आकर के हम कोई भी प्रकार का कर्म न करें, तब कहेंगे कि हाँ बुद्धि रूपी पांव उसके ऊपर है, धरनी से ऊपर, यानी उपराम स्थिति, डिटैच्ड जिसको कहा जाए, ये देह अभिमान की धरनी से ऊपर है। देह अभिमान के लगाव में न आकर के उससे ऊपर, और उड़ना है हमें खाली बुद्धि नहीं लेकिन मन बुद्धि। और जैसे दादी जानकी हमेशा कहती है अपने क्लासेस में, तीन बातें बताती है उसके लिए भी, कि मन बुद्धि और दिल। तो मन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, अच्छे विचार उसके अंदर फ्लो होते हो, बुद्धि स्पष्ट हो, क्लियर एकदम, और दिल साफ, है ना? तो दिल साफ, मन पॉजिटिव सकारात्मक, और बुद्धि स्पष्ट। यह कई बार दादी कहती है, मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल साफ, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। मन क्लीन हो एकदम, उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि न हो, बुद्धि एकदम स्पष्ट हो, दुविधा वाली न हो, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, उसने ऐसा कहा मैं अब ऐसा करूं, ये करूं, इसको कंफर्म करूं, इसको पूछूं, इसको, ये है दुविधा वाली स्थिति, यानी बुद्धि स्पष्ट नहीं है। बाबा ने अमृत वेले से रात तक हमें सारी दिनचर्या के लिए, हर बात के लिए एक श्रीमत दे दी है। जब बाबा ने दे दिया है तो अब कंफ्यूजन किस बात का, है ना? छोटी छोटी बातों में भी कई बार ब्राह्मण बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, पता नहीं श्रीमत क्या कहती है, किसको पूछे किसको न पूछे। बाबा ने जब हर बात कह दिया है, बाबा ने कई बार इसलिए कहा कि ये सोचो कि अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे, और उस कदम पर कदम रख करके चलना आरंभ करो। मुझे इधर उधर कहीं नहीं देखना है, बाबा को ही देखना है। सी फादर फॉलो फादर, जब इस तरह से सी फादर फॉलो फादर करते हुए हम चलेंगे तो कोई प्रकार का कंफ्यूजन माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर रहेगा नहीं, और दिल एकदम साफ, यानी शुभ भावनाओं से इतना भरा हुआ हो दिल हर आत्मा के प्रति, किसी के प्रति भी नफरत का मैल अंदर में न हो, इतना साफ दिल हो, तभी तो साहब राजी होगा। तो फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं, तो मन बुद्धि और दिल स्वच्छ स्पष्ट और साफ जितना होगा, उतना सहज हर प्रकार की आकर्षण से ऊपर उठ जाएंगे। न कोई बाह्य आकर्षण हमें खींच सकेगी, ना कोई अपने अंदर के स्वभाव की कोई आकर्षण हमें खींच सकेगी। प्राकृतिक बाह्य स्वरूप में भी कोई आकर्षण हमें खींच नहीं सकती है, उससे भी जैसे मुक्त सहज। तब उड़ने का अनुभव होगा। चौथी डेफिनेशन जो बाबा हमेशा कहते हैं कि फरिश्ता माना वतन से अवतरित हुए कर्म करने के लिए, कर्म पूरा हुआ समेट लिया कार्य और फिर से ऊपर समा जाओ, उस स्वरूप में समा जाओ। फरिश्ता यहां नहीं टिकता है, आता है कार्य किया और फिर चला जाता है। तो ये डेफिनेशन बाबा हम बच्चों को, तो हर रोज हमेशा बाबा के पास ऊपर रहना, वतन में कार्य करना है उस वक्त नीचे आना, कार्य करना चाहे वो स्थूल कार्य हो सूक्ष्म कार्य हो, कार्य समाप्त हुआ और फिर से ऊपर उड़ जाना समा जाना उस संपूर्ण स्वरूप में। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी हम सभी सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी जब मालूम पड़ा कि वतन में मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है और ये स्वरूप को उस स्वरूप में जाकर समाना है, तो बाबा ने भी ये आने जाने की ड्रिल आरंभ कर दी। और इसीलिए शायद पिछले 2-3 सालों से बाबा हम बच्चों को ड्रिल कराते हैं और यही कहते हैं चाहे 5 स्वरूप की ड्रिल करो, यानी ये प्रैक्टिस डेवलप करनी है, क्योंकि तभी उस फाइनल डिग्री को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह कभी कभी बाबा कहते साकारी आकारी निराकारी ये तीनों में आना जाना करते रहो। ये ड्रिल हर घंटे हमें करने के लिए बाबा ने जैसे होमवर्क दिया था, भावार्थ यही है कि प्रैक्टिस कराना चाहते थे बाबा हम बच्चों से, ताकि ये प्रैक्टिस जितनी नेचुरल हो जाए तो कभी भी कोई परिस्थिति आएंगी तो हम फंसेंगे नहीं, तुरंत अपने आप को ऊपर उड़ जाओ, डिटैच हो जाओ, बाबा के संग जाकर के बैठ जाओ। जैसे कई बार बाबा ने गारंटी दिया हम बच्चों को कि बच्चे जब ऐसी कोई बात आए तो आप सिर्फ ये कहो मेरा बाबा आ जाओ, और वो 1000 भुजा वाला हाजिर हो जाएगा आप सबके सामने। भावार्थ ये है कि जब ये बात कहे उस समय हमारी स्थिति अंदर की कैसी होनी चाहिए। यहां रहकर के अगर कहेंगे मेरे बाबा आ जाओ तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ऊपर उड़ जाए और बाबा के संग बैठ जाए और मेरे बाबा मैं आपके साथ हूं, तो शायद बाबा वहां अगर आप चले जाएंगे तो बाबा और अधिक वो गारंटी ले लेता है और हमें कोई भी बातों से कोई भी परिस्थिति में समस्या में हमें फंसा नहीं सकते हैं या कोई बात हमें फंसा नहीं सकती है, इतनी बाबा की गारंटी है। तो ये चौथा जो डेफिनेशन है फरिश्ते का, और 5वां डेफिनेशन है फरिश्तेपन का कि वो लाइट के कार्ब में होते हैं। बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे अंतवाहक शरीर को धारण कर लो, अंतवाहक या लाइट के कार्ब में अपने आप को देखो, क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं लाइट के कार्ब में होते हैं। तो ये लाइट का कार्ब कौन सा है? तो ये लाइट का कार्ब है पवित्रता का, कि इतनी पवित्रता की शक्ति हो कि वही आभा बन करके जैसे चारों ओर वो लाइट का रूप बन करके फैले, जो अंतिम समय अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगी दूर से ही, ये हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति के द्वारा ही ये लाइट का कार्ब हम तैयार कर रहे हैं। जितनी हमारी पवित्रता मन वचन कर्म हर लेवल पर, हर स्तर पर वो पवित्रता आ जाती है, उतना वो कार्ब हम तैयार कर रहे हैं। जो अंतिम समय अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बनेगा, तो वो कार्ब हम अपना तैयार, वो ड्रेस हम अपनी तैयार करते जा रहे हैं। और ये ड्रेस हमारी ही पवित्रता की शक्ति के आधार पर तैयार हो रही है। या अंतवाहक, अंत समय में जो वाहन का कार्य करता है, आप एक जगह बैठे होंगे लेकिन पृथ्वी के दूसरी ओर जैसे वो साक्षात्कार कराएगा। जैसे कई बार कई भाई बहने, विदेशी भाई बहने आते हैं तो बताते हैं कैसे ज्ञान में आए, तो वो हमेशा कहते हैं उनको, जैसे कभी प्रकाशमणि दादी जी का साक्षात्कार होता है, या कभी दादी जानकी का साक्षात्कार होता है, कभी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, तो ये कैसे वाहन बन करके, वो भले है यहाँ पर लेकिन पृथ्वी के दूसरे कोने में भी वो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करा के अनुभव करा सकते, तो जैसे एक वाहन का कार्य करता है और वो सूक्ष्म स्वरूप द्वारा अनेकों को महसूस करा सकता है, दर्शन करा सकता है। तो ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम भी अपना ये अंतवाहक शरीर तैयार करें। और ये अंतवाहक शरीर तैयार करने के लिए ही जो पहली धारणा बताई, अंतर्मुखता, ये अंतर्मुखता ही अंतवाहक शरीर को तैयार करने में मदद करेगा। साइलेंस की शक्ति, तो एक पवित्रता की शक्ति जो हमारे वो कार्ब को तैयार करती है, लाइट के कार्ब को तैयार करती है, उस ड्रेस को, चमकीली ड्रेस को तैयार करती है प्रैक्टिकल में। और अंतर्मुखता की स्थिति यानी साइलेंस की शक्ति, ये जैसे वाहन का कार्य, वो वाहन तैयार करती है। इसीलिए तो हर देवी देवताओं का एक वाहन भी दिखाते हैं और उसका स्वरूप भी दिखाते हैं। उनका स्वरूप वो दिव्यता वाला होता है, जहां वो आभा फैली हुई नजर आती है लाइट की, लेकिन वाहन जो होता है स्थूल में उन्होंने डिपिक्ट कर दिया, कोई ना कोई पशु या पक्षी के रूप में वाहन दे दिया, लेकिन वास्तव में हमारी ही अंतर्मुखता की स्थिति हमारा वाहन बन जाती है। साइलेंस की शक्ति हमारा वाहन बन जाती है। इसीलिए बाबा जब शक्तियों की बात करता है, उसमें विशेष कई मुरलियां बाबा की पवित्रता की शक्ति, ब्रह्मचर्य के ऊपर, ये ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया वो आचरण हमें करना है, और साइलेंस की शक्ति, इन दोनों के ऊपर बाबा की कई मुरलियां है, क्योंकि यही हमारे ड्रेस को भी तैयार करती, यानी हमारे स्वरूप को भी तैयार करती, हमारे वाहन को भी तैयार करती है। और तब जाकर के अंतिम समय ये सेवा जो होनी है, उसके लिए ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि उस समय उस वाहन में जैसे ही सेट हो जाते हैं, उस स्वरूप में जैसे ही सेट हो जाते हैं, तो जैसे साक्षात, जो बाबा कई बार कहते हैं पर्दा खोलूं, कि पर्दा खुलते ही ये स्वरूप और ये वाहन आपका ऐसा साक्षात्कार कराने के लिए जैसे तैयार हो, जिसके लिए बाबा कहे यही खुद के लिए भी, दूसरों को साक्षात्कार कराने की बात खाली नहीं है, लेकिन खुद के लिए भी ऐसा महसूस करेगा जैसे वो व्यक्ति बहुत सहज रीति से वतन में आना जाना। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ऊपर बहुत टाइम है, ऊपर आकर के मिलन मनाओ, नीचे तो कई प्रकार के बैरियर्स लग जाते हैं, कई प्रकार की बातें आ जाती है जो नीचे मिलन को संभव नहीं करती है, इतना सहज नहीं बनाती है। लेकिन ऊपर आ जाओ तो बाबा कैसे वो मिलन मनाने का एक अनुभव कराएगा, क्योंकि ऊपर टाइम और स्पेस आदि से भी परे हो जाते हैं। तो इसलिए यही वाहन हमें ऊपर सहजता से ले जाता है सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में ले जाकर के बाबा के साथ का अनुभव कराता है। क्योंकि हम सभी का भी वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है ऊपर, बस ये स्वरूप जाकर उस स्वरूप में मर्ज हो जाना है। तो इसीलिए उसका जितना स्पष्ट विजन होगा, जितना हमारा विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा, और ये स्वरूप को विजुअलाइज करने के लिए जो हल्कापन बताया हर बात में, जितना हल्कापन हर बात में आ जाएगा तो विजन हमारा इतना क्लियर हो जाएगा कि ये स्वरूप जाकर के उसमें समा जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हमेशा हम सुनते हैं, दादियां जब बाबा के साथ का अनुभव सुनाती है कि जब वो सेवा करके बाहर से आते थे, बाबा को समाचार सुनाते थे, तो भी बाबा का कितना सहज, बाबा जैसे एसेंस को कैच कर लेते थे और ऊपर हो जाते थे। दादियों को लगता था कि पता नहीं बाबा ने सुना नहीं सुना, बाबा से जब पूछते थे बाबा आपने सुना, जब हमने कहा बाबा पूरी बात बता देता था, तो लगता है कि बाबा तो जैसे यहाँ था ही नहीं, खोया हुआ था कहीं और फिर भी बाबा ने सब कुछ समझ लिया। या कई बार तो बच्चे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं और बाबा के सामने आते हैं, आते ही बाबा की स्थिति जैसे उनको भी उस अंतर्मुखता में ले जाती थी और वो प्रश्न पूछना ही भूल जाते थे, लेकिन फिर भी बाबा उनके मन के संकल्पों को कैच कर लेता था और उसी बात को बाबा बता देता था। तो कई बार बच्चों को लगता था बाबा ने कैसे ये बात को कैच कर लिया, बाबा ने कैसे हमारे मन की बात का ही उत्तर दे दिया। तो भावार्थ ये कि क्योंकि बाबा का मन इतना क्लीन था, क्लियर था बुद्धि और दिल साफ था, तो इसीलिए जब दादियां बताती कि बाबा जब ऐसे क्रॉस करते थे, जैसे पैदल चलते थे कई बार, तो भी ऐसा महसूस होता था कि जैसे एक बादल चला गया, इतना हल्कापन, लगता ही नहीं था कि बाबा के बॉडी के अंदर भी वेट है। इतना बाबा चलता था तो ऐसा लगता था एक बादल चला गया, एक नेचुरल स्वरूप। और यही स्वरूप हमें भी अपना बनाना है ना। तो खाली योग में बैठते समय में शिव बाबा के सन्मुख या ब्रह्मा बाबा बाप दादा के सन्मुख वतन में हूँ बाबा ऐसे है, ये हमें अनुभव नहीं कराता है। ठीक है कि वो संकल्प बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसको महसूस नहीं कर पाए। अच्छे संकल्पों को भी प्रैक्टिकल जो फील करना चाहिए वो फील नहीं हुआ, और फील इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि दिन भर में हमारा बहुत स्थूल के लेवल पर, एक ग्रॉस लेवल पर हम बहुत ज्यादा समय रहते हैं, ऊपर के लेवल पर कम समय बिताते हैं, इसीलिए वो उड़ने का अनुभव सहज नहीं हो सकता है। जब कोई भी संदेशी इसीलिए जाती है वतन में तो बहुत सहज उड़ जाते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब अव्यक्त बाप दादा का भी आवाहन करते हैं तो दादी गुलजार जैसे कितने दिनों से वो साइलेंस में चली जाती है, अगर कोई मिलने जाता है तो भी थोड़ा, और जिस दिन बाबा की पधरामणी होती उस दिन तो किसी से मिलते ही नहीं, सारा दिन अंतर्मुखता की स्थिति में। जैसे कि वो वाहन को दादी तैयार करती है भगवान के आवाहन के लिए, माना उसको जैसे वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उस अनुसार अपने वाहन को भी तैयार करती है, भावार्थी है। और इसीलिए जब वतन में जाते हैं वतन में सभा को भी देखते हैं और बच्चों की सभा होती है, लेकिन ये स्वरूप नहीं होता है हमारा। वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो हर एक का है, सूक्ष्म स्वरूप, वो स्वरूप वहां है, वो स्वरूप में सबको देखती है। तो अभी यही पुरुषार्थ हमें करना है कि ये स्वरूप उस स्वरूप में जाकर के समा जाए, और जितना ज्यादा उसको विजुअलाइज करते हुए, उसको फील करते हुए हम दिन भर में उसी अटेंशन में रहेंगे, हर लेवल पर जैसे कहा हल्कापन को ले आएंगे, नयनों में जैसे बाबा हमेशा कहते दिव्य दर्शन कराने वाले नयन हो उनके, मस्तक में जैसे वो मणि चमक रही हो, आत्म अभिमानी स्थिति इतनी निरंतर हमारी बनी हुई हो, तब जाकर के योग में बैठेंगे तो सहजता से ये महसूस करेंगे कि जैसे अव्यक्त बाप दादा के साथ में जाकर के बैठ गए। ऐसा महसूस होगा जैसे दादी संदेश ले आती है, कभी तो सभा देखती है दादी, अर्ध चंद्रमा के रूप में सभी खड़े हुए हैं, बाबा से दृष्टि सकाश लेते हैं, शक्ति लेते हैं। कभी देखते हैं कि जैसे हर एक के लिए कमल आसन होता है और वो कमल में से जैसे सात रंग निकल रहे होते हैं और इतना सुंदर वो दृश्य होता है, हर एक फरिश्ता स्वरूप में जैसे बैठे हुए हैं। कभी तो महसूस करते हैं कि बाबा का जैसे वरदानी हाथ हमारे हाथ सर के ऊपर है और बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। कभी तो महसूस करते हैं जैसे बाबा इतनी पावरफुल सकाश दे रहे हैं, और सकाश को भी गुलजार दादी ने एक बार स्पष्ट किया था कि सकाश माना क्या। एक होती है कि बाबा की शक्तिशाली किरणें मिलती है, लेकिन एक होती है कि बाबा की सकाश मिल रही है। तो सकाश में दादी ने बताया सात बातें होती है, और वो सात बातें कौन सी होती है तो उसमें दादी ने बताया कि उसमें सर्वशक्तियां होती है, सर्वगुण होते हैं, फिर सर्व वरदान होते हैं, तीसरा, चौथा सर्व खजाना होता है, हर प्रकार का खजाना जैसे उसमें समाया हुआ होता है, पांचवा सर्व प्राप्तियां होती है उसमें, अब कोई प्रकार की अप्राप्ति नहीं है, सर्व प्राप्तियां होती है, और दो शक्तियां जो देखी, पवित्रता की और साइलेंस की, ये शक्तियां तो सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व वरदान, सर्व खजाने, सर्व प्राप्ति और पवित्रता की, जैसे लाइट और साइलेंस की वो शक्ति, शक्ति में तो आई जाते लेकिन फिर भी पवित्रता को वो लाइट और माइट को सेपरेट किया है, तो लाइट और माइट से जैसे सशक्त हो जाते हैं। तो ये सात बातें जब आ जाती है वो बाबा की सकाश होती है, जिसमें हर प्रकार से भरपूर महसूस करना, हर घड़ी जैसे अपने आप को फील करना कि हाँ बाबा की सकाश मिली है। तो उसके लिए भी, सकाश को अनुभव करने के लिए भी फरिश्ता स्वरूप ही वो स्वरूप है जिसमें हम बाबा की सकाश को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जब नमः शाम के समय योग में बैठते हैं तो जैसे कहते हैं कि फरिश्ते निकलते हैं, और जो भक्त आत्माएं पुकार रही होती है जिन इष्ट देवी देवताओं को, तो यही फरिश्ते जाकर के उनको वो वरदान देते। तो हमें जो सकाश देनी है, माना वरदान देनी है, किसी को शक्ति देनी है, किसी को गुण देना है किसी को, तो पहले अपने आप को भरपूर करेंगे तब तो हम जाकर के ये मनसा सेवा कर सकेंगे। और यही मनसा सेवा पर दादी जी ने जो जोर दिया था इस बार अपने अव्यक्त दिवस पर कि अब बच्चे ये सेवा, मनसा सेवा को बढ़ाएं, भावार्थ ये कि बाबा से सकाश को प्राप्त करते हुए फिर नमः शाम के समय जैसे भक्तों की लाइन है, तो भक्तों को जैसे हम जो चाहिए उस अनुसार उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनको महसूस हो। साक्षात्कार तो बाद में होंगे, लेकिन कम से कम महसूसता तो दे सकते कि हाँ उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनके जो संकल्प है वो पूरे हुए, ये फील तो करे। तो इसीलिए जो इतनी श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से संपन्न होकर के जैसे प्रार्थना कर रहे होते, तभी बाबा कई बार कहते भक्तों की पुकार सुनाई देती है कि नमः शाम के समय ऐसे जैसे कि वो घंटियां बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो ये आवाज अभी तक भी जैसे आती नहीं है, लेकिन अब वो समय आ गया कि उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो इतनी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में वो प्रवाहित हो, वाइब्रेशंस, एनर्जी, वो ऊर्जा ऐसी प्रवाहित हो कि उनको वो शक्ति का अनुभव कराए, जैसे अंदर शांति। क्योंकि आजकल ये दादी ने पवित्रता और शांति को इसीलिए सेपरेट किया था कि हर एक को आज क्या चाहिए, शांति चाहिए ज्यादातर। तो शांति जितना आप योगयुक्त होकर के उनको देंगे, वो शुभ भावना को प्रवाहित करेंगे, उतना उनको शांति की महसूसता होने लगेगी। तो इसीलिए इस स्वरूप को हमें अब महसूस करना है खुद में भी, ये वाहन को तैयार करना है, ये ड्रेस को तैयार करना है, जितना ज्यादा जल्दी उसको स्टिचिंग कर ले, ड्रेस को जितना जल्दी स्टिच कर ले और बना ले वे हम अपनी धारणाओं के हिसाब से, तो उतना उस ड्रेस को पहन करके तो फिर देखो कैसा अनुभव होता है, कितनी लाइटनेस का अनुभव होता है। और ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम चल नहीं रहे हैं, लेकिन सहजता से फ्लोट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये महसूसता होने लगे। ठीक है ना? तो ये है हमारा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। फिर आप सभी को तो नीचे जाना है, दादी गुलजार योग कराएंगे, तो इसीलिए आज उसी स्वरूप में ही बैठते हुए अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में उड़ करके बाबा से भर करके फिर जाना है, जैसे मंदिरों में ये मनसा सेवा हमें करनी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।